लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। श्रोताओ, एवेंजेली गौडियम का तीसरा अध्याय सुसमाचार की घोषणा का जिक्र करता है। ख्रिस्तियों के रूप में हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बुलाए गए हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि लोगों के जीवन में सप्रेम सम्मिलित होना हमें उनके मध्य सुसमाचार को उचित रूप में घोषित करने के योग्य बनाता है। श्रोताओं, प्रवचन की एक दूसरी अच्छी विशेषता उसकी सकारात्मकता है। यह अपने में इस बात पर बल नहीं देता कि हमें क्या नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि यह हमें इस बात का सुझाव देता है कि क्या करने से बेहतर होगा। किसी परिस्थिति में यदि यह कुछ नकारात्मक बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराता, तो यह उसके एक दूसरे पहलू सकारात्मक और आकर्षक बिंदु का भी जिक्र करने की कोशिश करता है। कहीं ऐसा ना हो कि यह शिकायतों, विलापों, आलोचनाओं और निंदाओं में ही उलझ कर रह जाए। सकारात्मक प्रवचन सदैव हमें आशा प्रदान करता, भविष्य की ओर इंगित कराता, हमें नकारात्मक बातों में फंसा हुआ नहीं छोड़ता है। कितना अच्छा है जब याजक, उपयाजक और लोक धर्मी समय समय पर संसाधनों की खोज के लिए इकट्ठा होते हैं, जो धर्म प्रचार को और अधिक आकर्षक बनाता है। श्रोताओं, ईश्वर के प्रेरितिक कार्य की अनिवार्यता हमें विश्वास में बढ़ने का निमंत्रण देती है। तुम उन्हें उन बातों की शिक्षा दो जिसे मैंने तुम्हें सिखलाया है। अतः यह हमारे लिए स्पष्ट है कि प्रथम प्रचार भी हमें प्रशिक्षण और प्रौढ़ता के दौर से होकर जाने की मांग करता है। सुसमाचार प्रचार का लक्ष्य विकास की प्रक्रिया पर जोर देना है, जहां हम हर व्यक्ति को और उसके लिए ईश्वर की योजना को गंभीरता से लेते हैं। हम सबों को यीशु ख्रिस्त में विकास करने की आवश्यकता है। सुसमाचार का प्रचार हम में इस विकास की चाह को प्रेरित करता है, जिससे हम सारे हृदय से यह कह सकते हैं, मैं अपने जीवन में नहीं जीता, बल्कि यीशु ख्रिस्त मेरे जीवन में जीते हैं। विकास के इस आह्वान को विशेष रूप से या मुख्य रूप से सिद्धांत के संदर्भ में देखना सही नहीं होगा। यह हमसे उन बातों के अनुपालन की मांग करती है जिसे ईश्वर ने हमें अपने प्रेम के प्रत्युत्तर में दिखलाया और सिखलाया है। सद्गुणों के साथ इसका मतलब सभी नई आज्ञाओं से ऊपर है। पहली और सबसे बड़ी आज्ञा वह जो हमें मसीह के शिष्यों के रूप में सबसे अच्छी पहचान प्रदान करती है, यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। स्पष्ट रूप से जब नए व्यवस्थान के रचयिता गण ख्रिस्तीय नैतिकता के केंद्रीय संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे उसे अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की आवश्यकता स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वह जो अपने पड़ोसी को प्रेम करता है उसने संहिता के सारे नियमों को पूरा किया है। अतः पड़ोसी के प्रति हमारा प्रेम सारे नियमों की परिपूर्णता है। ये संत पौलुस के शब्द हैं, जिसके लिए प्रेम की आज्ञा केवल संहिता के नियमों को पूर्ण नहीं करती, बल्कि यह संहिता का हृदय है और इसके उद्देश्य का केंद्र बिंदु, क्योंकि पूरी संहिता की पूर्णता एक वाक्य में होती है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अपने समुदायों में पौलुस ख्रिस्तीय जीवन को एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो प्रेम में विकसित होता है। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबके प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। संत याकूब उसी भांति ख्रिस्तियों को अपने संबोधन में सुसमाचार के अनुसार सुनहले नियम को पूरा करने का आह्वान करते हैं, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो जिससे तुम किसी नियम के अनुपालन से वंचित ना रहो। वहीं दूसरी ओर इसका प्रत्युत्तर और विकास सदैव ईश्वर के उपहार के आधार पर होता है, क्योंकि ईश्वर सर्वप्रथम कहते हैं तुम उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। पिता का मुफ्त उपहार जो हमें उनके बेटे बेटियां बनाता है और उनकी कृपा की प्राथमिकता हमें निरंतर पवित्र करती जो ईश्वर को प्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा उनकी महिमा होती है। इस भांति हम अपने को यीशु ख्रिस्त में पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित होने देते हैं। श्रोताओ, शिक्षा और धर्म शिक्षा को हम विकास की सेवा में संलग्न पाते हैं। हम अपने लिए बहुत से कलीसियाई सिद्धांतों के दस्तावेजों और सहायताओं को पाते हैं जो धर्म शिक्षा के संदर्भ में वैटिकन और बहुत से कलीसियाई अधिकारियों के द्वारा दी गई हैं। संत पापा फ्रांसिस यहाँ विशेष रूप से प्रेरितिक प्रबोधन कैटेकिसी त्रादेंदाई अर्थात हमारे समय में धर्म शिक्षा और सामान्य धर्म शिक्षा की शब्दावली और दूसरे दस्तावेजों की बातों की याद दिलाते हैं, जिनका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मैं यहाँ एक संक्षिप्त विचार को व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। धर्म शिक्षाओं में भी हमने घोषणा या सुसमाचार की उद्घोषणा की मुख्य बिंदु को पुनः खोज निकाला है जो हमारे सुसमाचार के क्रियाकलाप और कलीसिया में नवीनता के सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु है। सुसमाचार का प्रचार त्रित्वमय ईश्वर का कार्य है। यहाँ हम पवित्र आत्मा की आग को पाते हैं जो हमें जिह्वों की भांति दिया गया है। यह हमें यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने को अग्रसर करता है जो अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अपने पिता की अनंत करुणा को प्रकट करते और उसे हमें प्रदान करते हैं। धर्म प्रचारक के मुख में सर्वप्रथम यह उद्घोषणा सदैव गुंजित होना चाहिए, यीशु ख्रिस्त तुम्हें प्रेम करते हैं, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन दिया और अब वे सदैव तुम्हारी बगल में रहते हैं जिससे वे तुम्हारे रोज दिन के जीवन को आलोकित करते हुए तुम्हें शक्ति प्रदान करे और तुम्हें स्वतंत्र करे। यह उद्घोषणा पहली घोषणा कहलाती है, इसलिए नहीं क्योंकि यह पहले हुई और जिसे भुलाया या अन्य दूसरे महत्वपूर्ण बातों से बदला नहीं जा सकता है। यह अपने में एक गौरवपूर्ण तथ्य है क्योंकि यह प्रमुख उद्घोषणा है जिसे हमें विभिन्न रूपों में बारंबार सुनाने की जरूरत है। इसे हमें किसी न किसी रूप में अपनी संपूर्ण धर्म शिक्षा की प्रक्रिया में घोषित करने की जरूरत है, हर परिस्थिति में और हर क्षण में। यही कारण है कि पुरोहित को कलीसिया में किसी दूसरे सदस्य की भांति अपने में इस चेतना में बढ़ने की आवश्यकता है कि उसे स्वयं निरंतर सुसमाचार की घोषणा में बढ़ने की आवश्यकता है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवार ये प्रसारण कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तरस रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे तरस रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे तेरा मिलन जो प्यारा ढूंढ रहा जग सारा तेरा मिलन जो प्यारा ढूंढ रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे तरस रहा तरस रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे तरस रहा
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धम पीठे विभाग ने मंगलवार को इस वर्ष के विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस की विषय वस्तु की घोषणा की, जो आजीविका एवं व्यक्तिगत विकास के विकल्प के रूप में प्रवासन को चुनने के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। 24 सितंबर को मनाए जाने वाले अप्रवासी एवं शरणार्थियों के 109वें विश्व दिवस के लिए संत पापा फ्रांसिस द्वारा चुनी गई विषय वस्तु इस प्रकार है, पलायन करने या रहने का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र। यह दिवस हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को उन लोगों को समर्थन देने और उन लोगों के प्रति चिंता व्यक्त करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है जो अपने घर से भागने के लिए मजबूर हैं। साथ ही दुनिया भर के कार्थिकों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे संघर्ष एवं उत्पीड़न से विस्थापित लोगों की याद करें तथा उनके बीच अप्रवासियों के लिए जागरूकता बढ़े। इस दिवस को पहली बार 1914 में मनाया गया था। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित परम धम पीठ विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष की विषय वस्तु एक ऐसे अधिकार पर विचार करने का निमंत्रण है जिसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संहिताबद्ध नहीं किया गया है, अर्थात अपनी मातृभूमि में रहने में सक्षम होने का अधिकार। संत्यागो द कमीनो विदिन एक नई फिल्म का शीर्षक है जो 28 मार्च 2023 को रिलीज हो रही है। फिल्म निदेशक के अनुसार फिल्म का उद्देश्य है लोगों को जीवन की भाग दौड़ से मुक्त होकर जीवन बदलने वाले तीर्थ यात्रा पर सुसमाचार प्रचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह 68 मिनट की एक लघु फिल्म है जिसमें संत्यागो चलने के दौरान तीर्थयात्रियों की शारीरिक एवं आध्यात्मिक यात्रा को चित्रित किया गया है। फिल्म प्रोड्यूसर एरिन बेरघोस तीर्थयात्रियों में से एक हैं। वे बतलाती हैं कि कमीनो, जिसका अर्थ स्पानी भाषा में चलना है, उन अवसरों में से एक था जब वे पवित्र आत्मा द्वारा हाईजैक की गई महसूस की। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में इरिन ने अपने शब्द हाईजैक पर प्रकाश डाला और बतलाया कि जब वे यात्रा पर चल रही थी तब सब कुछ दरकिनार कर दिया गया था। दुनिया की सभी आवाजें शांत हो गई थीं और उन्होंने ईश्वर की आवाज सुनी, पहले से एक अलग प्रकार की आवाज। संत्यागो द कमीनो विदिन को 28 मार्च को अमेरिका में अंग्रेजी और स्पानी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। रविवार को गेतसेमानी गिरजाघर में दो इसराइली कट्टरपंथियों द्वारा हमले के बाद यरूशलेम के प्रतिधर्माध्यक्ष थियोफिलुस तृतीय ने पौत्र भूमि एवं अन्य पौत्र स्थलों में ख्रिस्तों की बेहतर सुरक्षा की अपील की है। ऐसे समय में जब इसराइल फिलिस्तीनी तनाव बढ़ा हुआ है, शर्म अल शेख में इसराइल फिलिस्तीनी प्राधिकरण, मिस्र, जॉर्डन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच नई वार्ता शुरू होने के कुछ ही दिन पहले और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विवादास्पद न्यायिक सुधार, यरूशलेम पर चल रही अशांति के बीच पिछले सप्ताहांत ख्रिस्तियों के खिलाफ हिंसा की एक और घटना देखने को मिली। रविवार 19 मार्च को दो कट्टरपंथी इसराइली पुरुषों ने कथित तौर पर पूर्वी यरूशलेम में गेतसेमानी के गिरजाघर में प्रवेश किया, जहां कुंवारी मरियम की कब्र स्थित है। यरूशलेम के ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष थियोफिलुस तृतीय ने पौत्र सीनेट और पौत्र कब्र के धर्मबंधुओं के साथ घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इसे किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उनका बयान रविवार को जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि ख्रिस्त पुरोहितों के खिलाफ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के अलावा गिरजाघरों, कब्रस्थानों और ख्रिस्तों की संपत्ति को निशाना बनाया जाना लगभग एक दैनिक घटना बन गई है, जो स्पष्ट रूप से ख्रिस्तीय उत्सवों के दौरान बढ़ जाती है। ख्रिस्तीय और मुसलमानों दोनों के पौत्र स्थलों पर इन दिनों हमले हो रहे हैं। पिछले वर्षों में नाजरेथ की बसिलिका और कैथोलिक एवं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स महागिरजाघर पर हमले हुए हैं। नवीनतम घटनाओं में से एक नए साल के दिन हुए, जब एक एंग्लिकन कब्रस्थान में दो लोगों ने कब्र के पत्थरों को गिरा दिया और क्रूस को तोड़ डाला। यरूशलेम के ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष के अनुसार पौत्र भूमि की कलीसियाओं द्वारा की गई अपीलों, अनुरोधों और विरोधों के बावजूद इस निराशाजनक स्थिति ने स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट है कि पौत्र भूमि में प्रमाणिक ख्रिस्त उपस्थिति बहुत खतरे में है, इसलिए प्राधिधर्माध्यक्ष ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यरूशलेम और उनके पौत्र स्थलों में ख्रिस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आह्वान की है और मांग की है कि किसी भी पौत्र स्थल के खिलाफ आतंकवादी अपराधों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी उपाय किए जाएं। इराक में युद्ध शुरू होने की 20वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र के तात्कालिक प्रेरितिक राजदूत बागदाद में अपने समय को याद करते हैं, जहां संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें शांति के दूत के रूप में भेजा था। कार्डिनल फर्नांडो फिलोनी कहते हैं कि इराक में युद्ध उनके जीवन का एक सबसे मुश्किल दौर रहा। वे मध्य पूर्वी देश में युद्ध शुरू होने के ठीक 20 साल बाद वैटिकन न्यूज से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में बागदाद में बम विस्फोटों और आत्मघाती हमलों के बीच अपने पद पर रहते हुए प्रेरितिक राजदूत के रूप में कार्य किया था। कार्डिनल फिलोनी जनवरी 2001 में इराक में वैटिकन के प्रेरितिक राजदूत नियुक्त हुए थे और 20 मार्च 2023 को जब युद्ध शुरू हुआ तो वे इराक स्थित प्रेरितिक राजदूतावास में ही थे। उन्होंने कहा, मैं इस अवधि को मेरे जीवन के एक सबसे मुश्किल अवधि के रूप में याद करता हूँ। यह वह क्षण था जिसमें न केवल मैं बल्कि धर्माध्यक्ष, पुरोहित, विश्वासी और इराक के लोग धर्म भी युद्ध को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। वे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की याद करते हैं, जो अक्सर युद्ध और वार्ता द्वारा इसका समाधान करने की संभावना के बारे बोलते थे। वे याद करते हैं कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बारंबार शांति का आह्वान किया। जब क्षितिज पर युद्ध की हवा चल रही थी, तब उन्होंने परमधम पीठ से मान्यता प्राप्त राजनयिक कोर को संबोधित किया था और कहा था, युद्ध को नहीं, युद्ध हमेशा अपरिहार्य नहीं है, यह हमेशा मानव की हार है। जब युद्ध अपरिहार्य लगने लगा तो उन्होंने मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रार्थना और उपवास के एक दिन की घोषणा की, जिसको 5 मार्च 2003 को रखा गया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।